आप सभी शिव पुत्र गणेशों को, विद्यापतियों को, विघ्न विनाशकों को आज के सुंदर गणेश चतुर्थी की, आपके दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। सारे संसार में आज आपका आह्वान हो रहा है, आपकी जड़ प्रतिमाओं को स्थापित किया जा रहा है और गायन पूजन विशेष हृदय में कामना लिए हुए कि हमारे इष्ट विघ्नहर्ता हमारे विघ्नों को नष्ट करें, है ना। तो बाबा जैसे कहते हैं भक्तों की आवाज सुनाई देती है, तो आज तो जब मैं आ रहा था क्लास के लिए तो भक्तों के आह्वान के, उनके भजन कीर्तन और ये पटाखे ये आपके लिए है कि हे हमारे इष्ट आप कहाँ हो, है ना। तो आज सारे दिन एक आकर्षण महसूस हुआ, जैसे बाबा हमारी पुकार सुन के आ जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं, वैसे क्या हम ही आवाज सुनाई दे रही है। कितना विशेष गायन पूजन हम सभी का अष्ट विनायक के रूप में। मैं आ रहा था तो वो भजन सुनाई दे रहा था, उनका कीर्तन, अष्ट विनायक सिद्धि विनायक गणपति बप्पा। तो अष्ट विनायक हैं हम, अष्ट विनायक मोरेश्वर अर्थात जो पवित्रता का देवता है, पवित्रता का देवता बल्लालेश्वर जो शक्तियों का प्रतीक है, गिरिजात्मज जो शांति के प्रतीक हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, महागणपति जो सबको क्षमा करने वाले, सबको सुख देने वाले, वरद विनायक जो सबको वरदान देने वाले हैं, सिद्धि विनायक जो सबको सिद्धि अर्थात सफलता देने वाले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण विघ्न विनाशक। तो हम सबका इस रूप में गायन और पूजन हो रहा है, आह्वान हो रहा है। तो विघ्न विनाशक हम हैं, अभी तो विघ्न चाहे हमारे पास चाहे संसार के पास बहुत कम है, आने वाले समय में ये विघ्न कम होंगे या बढ़ते जाएंगे। बाबा ने कहा है अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने हैं, हिमालय जैसे पहाड़। तो ऐसे दुखों के पहाड़ जब गिरेंगे, व्यक्तिगत समस्याएं, समष्टिगत समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं जब बढ़ती चली जाएंगी, जब सरकार के पास भी कोई उपाय नहीं होगा, विज्ञान के पास भी कोई उपाय नहीं होगा, एक ट्रेलर हमने देख लिया है कोरोना काल में, सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए, विज्ञान ने भी, सब असहाय दिख रहे थे ना। और ये होना ही है, बाबा ने कहा है, तभी लोगों की दृष्टि भगवान की ओर जाएगी और भगवान के बच्चों की ओर जाएगी कि विज्ञान से भी बड़ी कोई सत्ता है, इस सत्ता से भी बड़ी कोई सत्ता है जो परम सत्ता है, वो कहां है। उसकी ओर नजर, तो विघ्न बढ़ते चले जाने हैं संसार में। इसीलिए अभी जैसे हमारा आह्वान हो रहा है, आगे हमारा आह्वान और बढ़ जाएगा, और भी ज्यादा। तो एक बार देख लें अपने शहर में या पूरे संसार में जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आपके स्थापित हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए स्थित हो जाएं उन जड़ प्रतिमाओं के स्थान पर। देखो पूरे संसार में जो भक्त आत्माएं हैं, विशेष भारत वर्ष में कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लंबोदर के, विघ्न विनाशक के स्थापित हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। पहुंच जाएं उस जड़ प्रतिमा के स्थान पर और स्वयं स्थित हो जाएं उस स्वरूप में। देखें अपने उस स्वरूप को, कितना सुंदर, कितना श्रेष्ठ, कितना डिवाइन, दिव्य अलंकारों से सुसज्जित। और सामने हजारों भक्त, मेरा गायन और पूजन करते हुए। मुझसे ये याचना करते हुए कि हे विघ्नेश्वर, आप ही मेरे विघ्न हर सकते हो, आप ही मेरी पीड़ा दूर कर सकते हो। हे चिंतामणि, मेरी चिंता हरो। हे वरद विनायक, मुझे वर दो, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। देखे सबके मन में मेरे प्रति कितनी आस्था, कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा। उस स्वरूप से अब यहां आ जाए, वही हमारा संपूर्ण स्वरूप है। समय की पुकार है कि अब हम अपनी उसी स्वरूप में स्थित हो जाएं जिस स्वरूप में संसार हमारा आह्वान कर रहा है। और भट्टी में है तो चेक कर लें, मुझे चिंतामणि के रूप में याद कर रहे हैं भक्त, कि आप हमारी चिंताओं को हरने वाले हैं, तो क्या चिंतामणि स्वयं चिंता से मुक्त है? या कभी कभी कोई चिंता परेशान कर देती है, हम चिंता की चिता पे सवार हो जाते हैं, हम चिंतामणि हैं। इस भट्टी से, इस स्वरूप को, आज के इस दिवस को बहुत गहराई से अपने अंतर मन में संभालें। वो मैं ही हूं जिसकी पूजा अर्चना हो रही है। चिंतामणि के रूप में यदि मुझे चिंता होगी तो क्या मैं भक्तों की चिंताओं को हर सकूंगा? लोग मुझे याद कर रहे हैं, भक्त याद कर रहे हैं इस रूप में कि आप वरद विनायक हैं, मुझे वरदान देने वाले हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। कहीं वरद विनायक खुद ही वरदान की कामना लिए हुए तो नहीं है कि बाबा मेरे ऊपर कुछ आशीष कर दें, कृपा कर दें, कोई कामना, कोई चाहना। जो वर देने वाला दाता है उसके पास स्वयं ही तो कोई कामना नहीं है। चेक करें, वो मेरा संपूर्ण स्वरूप और मेरा वर्तमान अभी कैसा है, वर्तमान कैसा है? वो मुझे विघ्न विनाशक के रूप में याद कर रहे हैं, कहीं मैं खुद ही विघ्नों से घिरा हुआ तो नहीं हूं? बाबा कहते हैं जिसके हाथ खुद ही बंधे होंगे वो दूसरों के हाथ कैसे खोलेगा, जो स्वयं दलदल में होगा वो दूसरों को दलदल से कैसे निकालेगा, जो स्वयं उलझन में है वो दूसरों की उलझन कैसे दूर करेगा? मैं कौन हूं? वो जो भगवान कह रहे हैं। इसलिए अब उस स्वरूप में मुझे स्वयं को स्थित करना है, इस हद से बेहद में आना है, हद से बेहद में। कहीं मैं विघ्नों से ग्रस्त तो नहीं हूं देख लो, मैं चिंताओं से ग्रस्त तो नहीं हूं ये देख लो, मेरे अंदर कोई इच्छाएं कामनाएं तो नहीं है ये देख लो, मैं कहीं सफलता देने वाला कहीं स्वयं ही असफल हो रहा हूं अपने पुरुषार्थ में, ऐसा तो नहीं है? और यदि ऐसा है तो क्यों? आज गहन चिंतन का विषय है, क्योंकि मुझे वहां पहुंचना है। कौन कितनी जल्दी पहुंचता है, इसके लिए ही ये भट्टी है, ये आत्मचिंतन आत्म मंथन के लिए है। हूं मैं कौन और कर क्या रहा हूं? जो दादी जानकी जी कहा करती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, हो कौन और कर क्या रहे हो। यदि विघ्न है वर्तमान समय मेरे जीवन में, तो बाबा ने कहा है जो लंबे काल तक विघ्नों से मुक्त होंगे, जो लंबे काल तक निर्विघ्न जीवन वाले होंगे, वही औरों के विघ्नों को नष्ट कर सकेंगे। मेरी क्या स्थिति है, मेरी क्या स्थिति है? यदि विघ्न है तो क्यों, कारण क्या, उसकी तलाश मैंने की भट्टी में। बाबा कहते हैं विघ्न तो आएंगे ही। बाबा कहते हैं बाबा का बनना अर्थात ब्राह्मण बनना अर्थात विघ्नों का आह्वान करना, ब्राह्मण बनना अर्थात ओखली में सर देना। तो ओखली में सर दिया है तो मूसल तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मूसल ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता कि विघ्न ना आए। और यदि विघ्न ना आते, यदि हमने विघ्नों को स्वयं के और संसार के दूर ना किए होते, तो हम क्या विघ्न विनाशक के रूप में याद किए जाते? गायन उसी का होता है जिसने कर्तव्य किया है। और यदि मैंने ये कर्तव्य किया है, इसीलिए आज पूरे संसार में इतने हृदय से मेरा गायन हो रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि मैं स्वयं भी विघ्न विनाशक बना हूं और संसार के विघ्नों को भी मैंने नष्ट किया है। लेकिन वर्तमान में यदि विघ्न है और मैं यदि उसमें उलझ गया हूं, तो विघ्नों के प्रति अपने नजरिए को मैं बदलूं, क्योंकि विघ्न तो अंत तक आएंगे बाबा ने कहा है, लेकिन विघ्नों को मुझे बिठा नहीं लेना है। बाबा ने कहा विघ्न आएंगे, लेकिन ये नहीं कहा है कि विघ्न आए और तुम उनसे हार जाओ, विघ्न आए और तुम उन्हें चाय पानी पिलाने के लिए बिठा लो, विघ्न आए और तुम्हें नमस्कार करके चले जाए, ये है तुम्हारा विघ्न विनाशक स्वरूप, बाबा ने कहा। तो एक नजरिया बाबा ने हमें एक सुंदर सा दिया है, ये हम अवश्य विघ्नों के लिए रखें। बाबा ने कहा विघ्न है टेस्ट पेपर, विघ्न तुम्हें हराने के लिए नहीं आते, विघ्न तुम्हें डराने के लिए नहीं आते। कई बार बच्चे कहते हैं ना कि बाबा अपनी माया से कहो कि वो हमारे पास ना आए, है ना? बाबा कहते हैं ना साकार मुरली में कई बार, बाबा आप अपनी माया को अपने पास ही रखो, अपनी बेटी को अपने पास रखो, उसको हमारे पास मत भेजो, उससे कहो कि वो हमें परेशान ना करे। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं तो कहता हूं कि जाओ अच्छी तरह इनका नाक पकड़ो, इनका कान पकड़ो, अच्छी तरह इनको पटकाओ, अच्छी तरह इनकी परीक्षा लो। क्यों, क्यों? बाबा कहते ये विघ्न ही तुम्हारे टेस्ट पेपर हैं। तुम जो रोज ज्ञान योग कर रहे हो उसका टेस्ट पेपर ये विघ्न ही है कि तुमने कितना ज्ञान को समझा, कितना योग को समझा। और बच्चों का जब तक एग्जाम ना हो, टेस्ट ना हो, तब तक वो प्रमोट नहीं होते। अगली कक्षा में जाना है तो बिना परीक्षा के चले जाते हैं क्या? बिना टेस्ट के चले जाते हैं? नहीं। तो ये परीक्षा, ये विघ्न मुझे प्रमोट करने के लिए आए हैं, आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। क्या ये नजरिया हमारा रहता है? या हम ये सोचते हैं कि हाय बाबा ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, बीमारी आ गई या कोई समस्या आ गई, कोई बात आ गई, कोई विघ्न रूप बन रहा है, कहीं हम हाय हाय में तो नहीं आ जाते, हलचल में तो नहीं आ जाते, परेशान तो नहीं हो जाते? ज्ञान किस लिए है? केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है जिसे हमें अप्लाई करना है। तो विघ्न क्या है? टेस्ट पेपर है। तो एक अच्छा स्टूडेंट परीक्षा को देखकर, टेस्ट को देखकर खुश होता है या दुखी हो जाता है? खुश होता है। जिसने तैयारी नहीं की है परीक्षा की, उसको पसीना आने लगता है, वो घबराने लगता है, उसको लूज मोशन लग जाते हैं, है ना? अब परीक्षा, हे प्रभु यदि ये परीक्षा थोड़ी और आगे बढ़ जाए, 15 दिन और मिल जाए, 1 हफ्ते और मिल जाए, 1 मास और मिल जाए, ना? जो कमजोर स्टूडेंट है और जिसने तैयारी नहीं की है। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट है, जिसने तैयारी की है, वो टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से आह्वान करता है, आओ मैं तैयार हूं। तो विघ्न टेस्ट पेपर है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। विघ्न अनुभवी बनाते हैं, और अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। तो जो भी विघ्न आएगा मुझे अनुभव प्रदान करने के लिए आ रहा है। विघ्न बड़े से बड़े शिक्षक हैं, अनुभव देखे जाते हैं। बाबा कहते हैं ये विघ्न खेल हैं, खेल, इसे खेल की तरह खेलो। और खेल तो मनोरंजन के लिए होता है, आनंद के लिए होता है। और जब पता हो कि इस खेल में मेरी जीत होनी है, तो खेल तो और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है, है ना? हम खेल की तरह खेलते हैं, डरते नहीं लेकिन उसका आनंद लेते हैं। और इस खेल में हमारी जीत तय है। हमारा उस्ताद, हमारा कोच विश्व का नियंता है, जगत नियंता है, और उसने पहले ही बता दिया इस खेल में तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा कोच हूं, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं। और इसमें, इस खेल में तुमने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है। जिसने अनेक बार विजय प्राप्त की हो वो घबराएगा या खुश होगा? खुश होगा। तो ये याद करना, कल्प कल्प का विजयी हूं मैं इस खेल में, इस खेल को हमारे लिए खेल बना देता है, मनोरंजन बना देता है। विघ्न फिर हमें डावाडोल नहीं करते। इसलिए विघ्न को क्या समझें? खेल समझें। बाबा कहते हैं ये विघ्न पेपर टाइगर, मरी हुई चींटी, ये हमारा नजरिया बाबा चेंज करते हैं। ये विघ्न क्या है? पेपर टाइगर, मरी हुई चींटी, और तुम कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर सर्वशक्तिवान पेपर टाइगर से घबरा जाए, मरी हुई चींटी से घबरा जाए, ये शोभा देता है? इसका अर्थ हुआ कि हम घबरा जाते हैं, हम अपने खुद के सीट पर सेट नहीं हैं। बाबा कहते हैं ये विघ्न क्या है? बादल हैं, आए हैं और चले जाएंगे। अभी जो बादल आ रहे हैं वो हमेशा रहेंगे क्या? पूरे साल रहेंगे क्या? आए हैं चले जाएंगे। बाबा कहते हैं बातों से, विघ्नों से भी ये सीखो। बातों में भी ये अकल है, विघ्नों में भी ये अकल है, आए हैं चले जाएंगे। तुम क्या करते हो? बातों को, विघ्नों को पकड़ के बैठ जाते हो। इसको कहते हैं बाबा अपने शब्दों में चाय पानी पिलाना, उसको सस्टेन करना, है ना? वो आया है, आया चला गया, अपनी सीख दिया चला गया। ये याद दिलाने के लिए कि तुम कितने स्ट्रांग हो। विघ्न हमें शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं। यदि विघ्न ना हो आत्मा कमजोर रह जाएगी। यज्ञ में जितने विघ्न आए, जितनी बाधाएं आई, हमारा यज्ञ शक्तिशाली हुआ या कमजोर हुआ? हमारी दादियां शक्तिशाली हुई या कमजोर हुई? कितने विघ्न आए, कितने विरोध थे, अभी तो कुछ भी नहीं है। पहले तो इतने विरोध थे कि गली से निकलो तो भी, हमारे बड़े सुनाते हैं कि पहले कई लोग जो थोड़ी डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, वो बैज ऊपर नहीं लगाते थे। उसे बैच नहीं पहना तुमने? नहीं पहना है, बनियाइन में लगाया है। तो डरते थे ना
कि कोई विघ्न रूप न बन जाए, इतनी ज्यादा।
लेकिन इन विघ्नों ने शक्तिशाली बनाया, क्योंकि विघ्नों के लिए नजरिया हमारा श्रेष्ठ हो। विघ्न क्यों आते हैं? एक तो सेल्फ क्रिएटेड विघ्न है, राइट? हमें उस पर चेकिंग करनी है, कहीं हम विघ्नों को खुद ही क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं। सेल्फ क्रिएटेड विघ्न, यदि मेरे बोल अच्छे नहीं हैं, मैं दूसरों को अपमानित करता हूं, टॉन्ट करता हूं, कर्कश है मेरे बोल, तो विघ्न कौन क्रिएट कर रहा है? मैं स्वयं अपने लिए विघ्न क्रिएट कर रहा हूं। बाबा ने कहा यदि अपवित्रता है तो वहां विघ्न होंगे ही होंगे। अपवित्रता विघ्नों की जननी है, जैसे पवित्रता सुख शांति की जननी है, वैसे अपवित्रता विघ्नों की जननी है। तो अपवित्र विचार लाना, अपवित्र भावों को अपने अंदर प्रकट करना या उन द्वारों को खोलना, ये कौन कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं ना, सेल्फ क्रिएटेड। हम स्वयं ही जिसको कहते हैं आ बैल मुझे मार, हम ये तो नहीं कर रहे हैं यदि अपवित्रता की चीजों को आने दे रहे हैं, उसके लिए मार्ग खोल रहे हैं, उन विचारों को सस्टेन कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वो आनंदित करता है और फिर कौन क्रिएट कर रहा है? चेक करें, मैंने किन द्वारों को, किन खिड़कियों को खोला है। बाबा ने कहा व्यर्थ विघ्नों का कारण है। यदि मैं व्यर्थ संकल्पों में हूं, नेगेटिव संकल्पों में हूं, अनावश्यक संकल्पों में हूं, दूसरों के विचारों में हूं, व्यर्थ विघ्नों को पैदा करता है। ये व्यर्थ क्रिएट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं ना। तो विघ्नों को निमंत्रण कौन दे रहा है? मैं स्वयं दे रहा हूं। बाबा ने कहा यदि तुम मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो, रावण तैयार बैठा है ले जाने के लिए, लकीर से बाहर कौन पैर निकाल रहा है? मैं। यदि मेरा अटेंशन नहीं है, मैं नियम मर्यादाओं से बाहर अपने पैर निकाल रहा हूं, जो बाबा ने हमें मर्यादा की लकीर खींच के दी है, मैं खुद ही खुद के लिए विघ्न क्रिएट कर रहा हूं। देख ले कहीं मैं स्वयं विघ्नों का निर्माण तो नहीं कर रहा हूं। और हम दूसरों की ओर उंगली उठाने लगते हैं कि इसके कारण विघ्न आ रहा है। कई बार हमारे हिसाब किताब भी विघ्नों को जन्म देते हैं, बीमारियां आ रही हैं। अब मैंने बहुत ध्यान रखा शरीर का अपने, लेकिन फिर भी कोई बीमारी आ गई मेरे हिसाब किताब के कारण, तो हिसाब किताब भी तो चुक तो होने ही है ना। लेकिन उस विघ्न को विघ्न समझना मेरे ऊपर है कि मैं उसे बहुत सहजता से, सरलता से उस समय को निकालता हूं या चीख चिल्ला के निकालता हूं। यह भी तो एक सुंदर नजरिया है कि आया है, हिसाब पूरा हो रहा है। एक सन्यासी, उसको 20 साल तक जेल में रहना पड़ा किसी बात को लेके। 20 साल के बाद यह सिद्ध हुआ कि ये निर्दोष है। 20 साल जेल में निकाले, जब वो बाहर आया, पूछा पत्रकारों ने कि 20 साल आपने जेल में निकाले, आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? उसने कहा चलो इस जन्म में तो मैंने नहीं किया कोई पाप कर्म, मेरे पिछले जन्मों के पाप कर्मों का ये हिसाब क्लियर हो रहा है, क्लियर हुआ। तो हिसाब पीछा तो नहीं छोड़ते ना, चाहे वो बीमारियों के रूप में आए, चाहे कोई व्यक्ति हमारे जीवन में विघ्न रूप बने। अब जो व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अच्छा होता है, वही व्यक्ति आपके लिए विघ्न रूप होता है। होता है ना ऐसा? वो दूसरों के लिए अच्छा है लेकिन मेरे लिए विघ्न क्रिएट करता रहता है। क्यों? कोई ना कोई हिसाब है ना, वो हिसाब मेरे साथ है इसलिए वो क्लियर हो रहा है। तो वहां से भी एक हिसाब की बात, यदि कोई इस प्रकार की बात है तो चाहे विल स्पिरिट्स, वो भी तो हिसाब लेने के लिए आएंगे ही, कईयों के साथ होता है कईयों के साथ नहीं। तो जहां कहीं भी हिसाब है वहां पे ये विघ्न दिखाई देता है। लेकिन बाबा ने एक बहुत प्यारी सी बात कही है, बहुत सुंदर सी बात। बाबा की हर बात वैसे खूबसूरत है, सुंदर है, लेकिन यदि हमें विघ्न मुक्त होना है, विघ्न विनाशक बनना है सारे संसार के लिए, तो क्या करें? वैसे भी दिखाते हैं कि पार्वती जी ने अपने मैल से गणेश को जन्म दिया. मैल से अर्थात देहभान, देह अभिमान, पुरानापन. बाबा ने आकर क्या किया, वो सिर निकाल दिया, है ना. यदि अब तक उस पुरानेपन अर्थात देहभान में है, उसी अपवित्रता में है, उसी व्यर्थ में है, उसी सांसारिक बातों में उलझे हुए हैं, तो जीवन विघ्न रूप रहेगा ही रहेगा. यदि पुराना पन, पुराना देहभान, पुरानी दुनिया का आकर्षण, ये सारी चीजें हैं, जीवन विघ्नों से भरा हुआ होगा. क्या करें, देह को समर्पित, सिर को, सिर दिखाया ना वहां, अपने सिर को अर्पित, सरेंडर परमात्मा के आगे. जो भी पुरानापन है वो अर्पित कर दें. और शीश धारण कर लिया, किसका, किसका, हाथी का, जो कि विशेष अलंकारों से सुसज्जित है. तो यदि निर्विघ्न बनना है, अपने जीवन को विघ्नों से मुक्त करना है, अपने उन अलंकारों को हम धारण कर लें. शिव पुत्र हूं मैं, शिव पुत्र गणेश अपने पिता की गोद में बैठ जाए, बाप दादा की गोद में. जो भगवान की गोद में बैठा हो, अपने पुरानेपन को समर्पित करके, पुरानापन रहेगा तो विघ्न रहेंगे ही रहेंगे. अपने आप को मैं शिव पुत्र गणेश हूं, उनकी गोद में हूं, मेरे पिता सर्वशक्तिवान हैं. यदि इस भाव में मैं स्थित हूं, गोद में हूं ईश्वर के, उनकी छत्र छाया में हूं, तो क्या जीवन में कोई विघ्न आ सकते हैं. जब हम उनकी गोद से उतर जाते हैं, तब जीवन में विघ्न आना शुरू हो जाता है. इसीलिए उनकी गोद में, भगवान की गोद से बड़ा कोई स्थान हो सकता है, भगवान के दिल तक से बड़ा कोई स्थान हो सकता है. ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर ने हमें अपनी गोद में स्थान दिया. सारे संसार में हम वो चुनी हुई आत्माएं हैं जिन्हें भगवान ने अपना बनाया, अपनी गोद में स्थान दिया, अपनी सर्व शक्तियां दी, अपने सर्व गुण दिए, अपना संपूर्ण ज्ञान दिया, ये अधिकार दिया कि तुम बिल्कुल मेरे समान ही गाए और पूजे जाओगे. तो यदि विघ्न मुक्त बनना है तो क्या करें, पहली बात शिव पुत्र हूं. और कहां हूं, बाबा की गोद में हूं, उनकी छत्र छाया में हूं, उनके अंग संग हूं, जिनके साथ ईश्वरीय शक्ति है, जिनके साथ स्वयं ईश्वर हैं, उनके जीवन में कोई विघ्न नहीं होगा, बल्कि वो सबके लिए विघ्नहर्ता बन जाएंगे. जैसे भगवान सबके विघ्नों को हरने वाले हैं, हरि हैं, वैसे हम भी हरि के पुत्र हरि हो जाएंगे, हम भी विघ्नहर्ता हो जाएंगे. लेकिन शर्त यह है कि हमें उनकी गोद में रहना होगा, कंबाइंड रहना होगा, उनके अंग संग. दूसरी बात, गणेश जी का एक चित्र दिखाते हैं कि उन्होंने शिव जी को बिल्कुल आलिंगन किया हुआ है. देखा है, शिवलिंग को बहुत अच्छी तरह से आलिंगन किया हुआ है. भाव क्या है इसका, बहुत ही निमग्न है, प्रेम में डूबे हुए हैं, जैसे उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस शिव ही मेरे सर्वस्व हैं. तो जैसे गणपति को यह दिखाया जाता है, वो मगन है, डूबे हुए हैं. तो बाबा कहते हैं यदि तुम भी मगन रहोगे, डूबे रहोगे, तो जहां लगन है वहां विघ्न नहीं है. जहां लगन में कमी है, जहां डूबे हुए स्थिति में कमी है, वहां विघ्न पैदा होता है. और यदि हम डूबे हुए हैं एक में, आलिंगन अर्थात उस भाव का अर्थ है मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, एक ही मेरा संसार, एक ही मेरा सर्वस्व, ये भाव हमें निर्विघ्न कर देता है. और परमात्मा से हमें वो शक्ति दिला देता है कि हम भी सबके विघ्नों को नष्ट करने वाले हो जाएं. तो हम कितने डूबे हुए हैं ये देखें, क्या चेक तो करना है ना. और अपने आप को संपूर्ण स्वरूप तक लिए चलना है। तो जिस स्वरूप का मेरा गायन और पूजन हो रहा है, उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए एक में डूब जाऊं, एक ही मेरा संसार। वो कहानी भी आती है कि शिव जी ने और पार्वती जी ने कहा कार्तिकेय को और गणेश को कि रिद्धि सिद्धि से हम उसका विवाह करेंगे जो पूरे विश्व की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा। तो कार्तिकेय जी तो अपने मोर में बैठ के निकल पड़े कि मैं सबसे पहले आऊंगा, ये तो अपने चूहे में बैठ के धीरे धीरे चलेगा, तो वो तो निकल गए। लेकिन गणेश जी ने क्या किया, अपनी माता पिता की ही परिक्रमा कर ली, अर्थात मेरे माता पिता ही मेरे संसार हैं, शिव ही मेरे सर्वस्व हैं, बस वही मेरे लिए सब कुछ है, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये उसका भाव है। अब जब एक ही सर्वस्व हो गए, एक को ही सब कुछ मान के उन्होंने परिक्रमा कर ली, तो शिव जी ने भी उन्हें विश्व की बादशाही दे दी। रिद्धि सिद्धि तो क्या, पूरे विश्व की बादशाही, विश्व का मालिक, प्रथम पूज्य देव। वैसे भी हम सब चूंकि शिव की प्रथम रचना है, इसीलिए प्रथम पूज्य, प्रथम पूजा हमारी हो रही है, और इसलिए भी प्रथम पूजा क्योंकि हमने प्रथम स्थान अपने जीवन में किसको दिया, शिव को दिया, परमात्मा को दिया, इसीलिए हमारी भी प्रथम पूजा हो रही है। विघ्न विनाशक वो बन जाएंगे जो सारे उन अलंकारों को ग्रहण कर लेंगे जिन अलंकारों की आपकी पूजा हो रही है। देख रहे हैं ना किस अलंकार के रूप में पूजन, विशाल ललाट, किस बात का प्रतीक, आपकी बुद्धिमता का प्रतीक, विशालता का प्रतीक, छोटी छोटी बातों में उलझे हुए नहीं, विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि, विशालता से पूरी सृष्टि को देखने वाले, बड़े कान, किस बात के प्रतीक, सबकी सुनने वाले, लेकिन बड़ा पेट अर्थात समा लेने वाले, सुना लेकिन समा लिया, अच्छी बुरी कोई भी बात है उसे समा लिया, छोटे नेत्र, दूरदर्शिता का प्रतीक, एकाग्रता का प्रतीक, एक दंत, केवल एक नामी रहने का प्रतीक, एक बाबा दूसरा ना कोई उसका प्रतीक, उसका स्वरूप, द्वैत भाव ना रखने वाले सभी मेरे लिए एक जैसे हैं उस भाव का प्रतीक, राइट? उनके हाथों के अलंकार, उन अलंकारों पर भी हम जरूर चिंतन करें, इन अलंकारों को हमने कहां तक धारण किया है, कुल्हाड़ी, माया मोह के जो भी जंजाल हैं, संसार के जो जंजाल हैं, कितना मैंने उन्हें काटा है, रस्सी, मैं कितना मर्यादित रहता हूं, अनुशासन में कितना रहता हूं, नियम मर्यादाओं में रहना, अनुशासन में रहना, वो उस रस्सी का प्रतीक, मोदक, एकता का प्रतीक, मुख मीठा करने कराने का प्रतीक, हम अपनी वाणी से कितना सबका मुख मीठा करते रहते हैं, कितना सबको वरदान देते रहते हैं, दुआएं देते रहते हैं, शुभकामनाएं देते रहते हैं, ये मेरा स्वरूप है। यदि हम इस स्वरूप में हैं तो विघ्नों से मुक्त रहते हैं, इसलिए अब इस स्वरूप में अपने आप को स्थापित करना है। बाबा ने एक और गहरी बात कही है, एक बात उससे पूर्व बाबा ने कहा, कई बच्चे ये संकल्प करते हैं कि अभी तो हम पुरुषार्थी और हमारा ये जो संपूर्ण विघ्न विनाशक का स्वरूप है, विघ्नों से मुक्त का स्वरूप है, ये तो अंत में हम बनेंगे। बाबा ने कहा ये भी रॉयल अलबेलापन है, ये भी संपूर्ण बनने में विघ्न है। यदि तुम ये सोचते हो कि संपूर्ण तो हम अंत में बनेंगे, संपूर्ण निर्विघ्न तो हम अंत में बनेंगे, विघ्न विनाशक का हमारा स्वरूप तो अंत का है, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, ये भी रॉयल अलबेलापन है, और ये विघ्न बन रहा है तुम्हारी संपूर्ण बनने में। अंत कब, और कब अंत आएगा, कब हम बनेंगे, कब सारे संसार को इस रूप में अपने साक्षात्कार कराएंगे और कब सारे संसार के विघ्नों को हरेंगे, कब, कब? कब? आज अभी इसी वक्त, आज अभी इसी वक्त इस स्वरूप को मुझे धारण करना है। बाबा ने एक मैसेज में कहा था, ये शब्द बाबा डिक्शनरी से हटा रहे हैं ब्राह्मणों के, कि मैं बन रहा हूं, मैं बन रहा हूं, बाबा इस शब्द को कैंसिल कर रहे हैं। बाबा ने एक मैसेज में कहा, बन रहा हूं, बन रहा हूं, बन रहा हूं, कब बनोगे? बाबा ने कहा इसकी बजाय ये शब्द कहो, मैं हूं, आई एम, मैं हूं। इस बात पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा, मैं विघ्न विनाशक बन रहा हूं, मैं सिद्धि विनायक बन रहा हूं, मैं बाप समान बन रहा हूं। बन रहा हूं मतलब प्रोसेस चल रही है, अभी मैं पुरुषार्थी हूं, मैं अपने आप को मार्जिन देता हूं कि मैं गलती कर सकता हूं, मैं अमृत वेले मिस कर सकता हूं, मैं मुरली मिस कर सकता हूं, मैं गुस्सा कर सकता हूं, मैं व्यर्थ सोच सकता हूं, मैं दूसरों से झगड़ सकता हूं, मैं प्रदर्शन कर सकता हूं, मैं अपने आप को थोड़ा छुट्टी देता हूं क्योंकि मैं बन रहा हूं, है ना? नहीं, बाबा ने कहा ये शब्द कैंसिल करो। तो आज से ये शब्द कोई ना बोले। कौन सा शब्द हमें बोलना है? मैं हूं, मैं हूं। जब मैं हूं इस बात को मैं स्वीकार कर लेता हूं तो मेरा वो स्वरूप बनता चला जाता है। ये बहुत गहरा मनोविज्ञान है, बहुत गहरा मनोविज्ञान है जो बाबा हमें सिखा रहे हैं। तुम ये हो, बाबा ने कभी ये कहा का कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन रहे हो? नहीं, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम विघ्न विनाशक हो, तुम संसार के पालनहार हो, हो। भगवान हम इस दृष्टि से देख रहे हैं, भगवान हम ये कह रहे हैं, हम भी इसे स्वीकार करके जाएं, मैं हूं। इस भट्टी का अपने आप को ये वरदान ले लेना, खुद से भगवान का हाथ अपने सिर के ऊपर रखते हुए कि भगवान ये वरदान दे रहे हैं, बच्चे तुम ये हो। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने मुझे ये वरदान दिया है, भगवान ने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया है, किसी मनुष्य ने नहीं या स्वयं मैंने ही स्वइच्छा से नहीं धारण कर लिया है। कोई स्वइच्छा से ही कुछ कुछ डिग्रियां ले लेते हैं ना कि मैं ऐसा हूं, नहीं, भगवान ने मुझे ये दिया है, स्वीकार कर ले। तो बाबा ने एक बात कही, तुम्हारे जीवन में जितने भी विघ्न हैं हम धारण तो कर लें अपने स्वरूप को, लेकिन इस बात पर भी चिंतन, बाबा ने कहा तुम्हारे जीवन में जितने भी विघ्न और समस्याएं हैं उनका एक ही कारण है। एक तो हमने सेल्फ क्रिएटेड विघ्न देख लिए, एक हमारे जो अलग अलग प्रकार के हमारे जो हिसाब किताब है उनके द्वारा जो विघ्न आते हैं वो देख लिए। बाबा ने कहा जितने भी तुम्हारे जीवन में विघ्न आ रहे हैं, बाबा के महावाक्य, चाहे वो पुरुषार्थ में है, चाहे लौकिक परिवार में है, व्यापार में है, जीवन में है, उनका एक ही कारण है। क्या कारण है? अच्छी बात है ना, यूं तो बहुत सारे कारणों की हम लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन बाबा ने विशेष एक बात कही, तुम्हारे जीवन में जितने भी विघ्न और समस्याएं आ रही हैं उसका एक ही कारण है। यदि तुम इस एक कारण को ठीक कर लो तो तुम सर्व विघ्नों से मुक्त हो जाओगे। कौन सा? बाबा ने कहा तुम्हारी सभी समस्याओं का एक ही कारण है, तुम्हारा लूज कनेक्शन, लूज कनेक्शन। यदि ऊपर वाले के साथ तुम्हारा कनेक्शन लूज है तो जीवन में समस्याएं आएंगी ही आएंगी, विघ्न आएंगे ही आएंगे। इसलिए क्या करो, अपने लूज कनेक्शन को टाइट करो। यदि कनेक्शन लूज है तो क्या करो, बाबा के सामने आकर बैठो और पक्का करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ट्रैफिक कंट्रोल के नियम इसीलिए बने हुए हैं ना कि बार बार हम बाबा के सामने बैठें, कहीं पे भी रहें लेकिन बाबा के पास पहुंच जाएं, बाबा को देखें, बाबा से शक्ति लें, सकाश लें, बाबा की टचिंग को कैच करें उनकी शक्ति से, सकाश से। और यदि कोई विघ्न आने वाला है, कोई बात आने वाली है, तो बाबा की प्रेरणा से बाबा की शक्ति और सकाश से हम उस विघ्न से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा सर्व विघ्नों का कारण ये है, इसीलिए बाबा के सामने बैठो और फिर भी कनेक्शन ना जुड़ रहा हो तो पक्का करो मैं बाबा का, बाबा मेरा। इससे बाबा से तुम्हारा लूज कनेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, और कनेक्शन ठीक हुआ समस्याएं दूर। कनेक्शन लूज होगा तो ये लाइट नहीं जलेगी, ये माइक काम नहीं करेगा, राइट? अंधेरा हो जाएगा यहां, और अंधेरा हो जाएगा तो हम किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे, राइट? हमें टटोलना पड़ेगा, और अभी लाइट है तो हम हर चीज को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। वैसे ही जब कनेक्शन ऊपर वाले से लूज हो जाता है तो यहां अंधेरा हो जाता है, और यहां अंधेरा है तो हम चीजों को परख नहीं पाते, ठीक से निर्णय नहीं कर पाते, फलतः जीवन विघ्नों से युक्त हो जाता है, समस्याओं से हम ग्रस्त हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। इसीलिए अपने इस कनेक्शन को हमें हमेशा ठीक रखना है, कंबाइंड रहना है। जैसे कहा ना, बाबा की गोद में हूं, बाबा की गोद में हूं, जुड़ा हुआ हूं बाबा से, बाबा को जैसे हक किया हुआ हूं, शिवलिंग को जैसे पकड़ा हुआ है ना, वो इस बात का प्रतीक, डूबा हुआ, मग्न, केवल एक ही मेरा संसार। ये स्थिति हमें विघ्नों से सहज रूप से मुक्त कर देती है। साथ ही हम इन बातों का भी ध्यान रखें, 5S, जो आपको हमेशा विघ्न मुक्त भी रखेंगी, जीवन को निर्विघ्न रखेंगी, और साथ ही आपको भविष्य में विघ्न विनाशक स्वरूप से सारे संसार का कल्याण करने में मदद करेंगी। 1S, सकारात्मकता। सकारात्मक रहे, विघ्नों के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना है हमें। कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी चीज के लिए नेगेटिव नहीं होना है, नकारात्मक नहीं होना है, हाय ये क्या हुआ, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, नहीं। बाबा ने कहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तुम ब्राह्मणों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, ये भगवान उवाच है। तुम ब्राह्मणों का कभी अकल्याण हो नहीं सकता, ये भगवान उवाच है। फिर मैं हाय क्यों कहूं, बाबा ने वाह करने को कहा है, और ये कहा है अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण को देखने का नजरिया विकसित करो। क्या मैं कल्याण को देख सकता हूं? कल्याण, सकारात्मकता। यदि कुछ बुरा हो भी रहा है उससे मैं क्या अच्छा उठा सकता हूं, उसमें क्या अच्छाई ले सकता हूं, उस ओर यदि मेरी नजर है तो कभी भी विघ्न मुझे प्रभावित नहीं करेंगे, मैं विघ्न ग्रस्त नहीं होऊंगा, और कभी उसका प्रभाव मुझे नीचे नहीं गिराएगा। जैसे कहा विघ्न आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, ये सकारात्मकता हमें आगे बढ़ाता है, जो नेगेटिव है वो नीचे चला जाता है, और जो पॉजिटिव है उस विघ्न के लिए, जिसको कहा जाता है आपदा को भी अवसर बनाओ, आपदा को भी अवसर बनाओ, तूफान को भी तोहफा बनाओ। एक ही चीज दो लोगों को के लिए अलग अलग होती है, उनके नजरिए पे, उनकी सकारात्मकता पे या देखने की दृष्टि पे डिपेंड करता है। सुंदर पिचई जी एक अपने जीवन का अनुभव शेयर करते हैं कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था, अचानक बगल के टेबल पे कुछ महिलाएं बैठी थीं, वो बहुत जोर जोर से आवाज करने लगी। देखा तो उनके टेबल पे काकरोच आ गया था, वो बहुत पैनिक हो गए, बहुत चीखने चिल्लाने लगे, पूरे रेस्टोरेंट का माहौल ही बदल गया। वहां एक वेटर आया, शांति से उस काकरोच को उठाया और रेस्टोरेंट के बाहर फेंक के आ गया। चीज एक ही है लेकिन दो लोगों का उसे देखने का, उसके प्रति या तो रिएक्ट करने का या रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग अलग, राइट? कोई उस काक्रोच को देखकर चिल्ला रहा है और कोई शांति से आता है उसे उठा करके बाहर ले जाता है। विघ्न भी आते हैं तो हमारा भी ऐसा ही होता है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा चीखे चिल्लाएं, परेशान हो, या बहुत शांति से उस समय को पार करें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। दूसरी चीज स्वमान, सेकेंड इज स्वमान. बाबा ने कहा यदि तुम स्वमान की सीट पर सेट रहोगे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी उस सीट के नीचे दबकर समाप्त हो जाएगी. हम ही अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते. कितने ऊंचे स्वमान के सिंहासन बाबा ने हमें दिए हुए हैं, उन स्वमानों में यदि हम रहते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या बाबा ने कहा उस सिंहासन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएगी. ये भी बाबा ने कहा यदि तुम स्वमान में रहते हो तो जैसे ज्ञान सूर्य की किरणें तुम्हारी छत्र छाया बन जाती हैं, तुम विघ्न मुक्त हो जाते हो. और यदि तुम स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते तो समस्याएं तुम्हें परेशान करती हैं. तो सेकेंड इज अपने सुंदर स्वमान जो बाबा ने दिए हैं अपने इस अष्ट विनायक स्वरूप में ही अगले 8 दिनों तक, जब तक गणपति जी स्थापित हैं, अपने इन्हीं अलग अलग स्वरूपों में हम यदि स्थित रहें, हमारी उन स्वमानों के माध्यम से, उन स्वरूपों के माध्यम से भक्तों को भी कितनी सुंदर प्रेरणा मिलेगी, सकाश मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और हमारा भी ये स्वरूप हमारे लिए पक्का हो जाएगा. तो स्वमान सेकेंड इज स्वमान. थर्ड इज है साथ, बाबा का साथ. यदि बाबा साथ हैं हमारे लिए हर विघ्न खेल है. यदि सर्वशक्तिवान साथ है तो हमारे लिए हर बात बहुत सहज है, सरल है. जिसको बाबा कहते हैं हो सकता है कि तुम कमजोर हो लेकिन तुम्हारा साथी तो सर्वशक्तिवान है. तो साथ हम कितना रहते हैं बाबा के, यदि हम उनकी ओर देख लेते हैं, उनका साथ ले लेते हैं. जिसको बाबा कहते हैं यदि भगवान का हाथ पकड़ लो तो तुम्हें किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तुम भगवान की ओर अपना मुख कर लो, तुम्हें किसी और की तरफ मुख करने की जरूरत, अर्थात किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और ये इटर्नल लॉ है, जो भगवान को देखता है सारा संसार उसकी ओर देखता है, जो भगवान की बात सुनता है सारा संसार उसकी बात सुनता है, जो भगवान के साथ रहता है सारा संसार उसके साथ रहना चाहता है. तो हम भी अपने आप को भगवान का ऐसा सुंदर साथी बना लें. अभी तो समय है ना भगवान के साथ का सुंदर अनुभव करने का. स्वर्ग में बाबा होंगे, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में नहीं ना, केवल संगम में अब थोड़े से समय भगवान का साथ हमें प्राप्त है. क्यों ना उनके अंग संग रहते हुए उनके रंग में हम स्वयं को रंग लें, उनमें ऐसे डूब जाएं कि माया को हम दिखाई ही ना दें. बाबा कहते हैं तुम डूबे हुए नहीं रहते, बार बार कभी सिर निकाल के बाहर ताक झांक कर लेते हो और जब तुम बाहर निकल के देखते हो तो वैसे ही माया फिर वो तो इंतजार करती रहती है कि कब ये अपना मुंह बाहर निकाले, सागर में डूबा हुआ है लेकिन कब ये बाहर आएगा, तुरंत मैं पकड़ू. तो डूबे रहें, बाहर आने की आवश्यकता नहीं. अब संसार को देखने की जरूरत है, संसार से कुछ चाहिए, कोई इच्छा कामना, हम देने वाले हैं. एक पक्का कर लें, आई एम बॉर्न टू गिव, आई एम बॉर्न टू गिव, मैं देने के लिए पैदा हुआ हूं. संसार को वरदान देने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए, संसार को पवित्र बनाने के लिए अवतरित हुआ हूं. मैं आया ही हूं देने के लिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. और जब हम साथ रहते हैं बाबा के तो ये देने का भाव हमारे अंदर आता है. भगवान जैसे दाता हैं, क्या वो कामना रखते हैं कि ये थोड़ा सा मेरी स्तुति करें कि बाबा आप तो ये हो वो हो उसके बाद मैं इन्हें कुछ दूंगा, कामना रखते हैं बाबा? हमें भी किसी से कुछ नहीं चाहिए. सूर्य कोई कामना नहीं रखता, चांद कोई कामना नहीं रखता, पेड़ कोई कामना नहीं रखता, नदी कोई कामना नहीं रखती, मुझे भी कोई कामना नहीं रखना है. फोर्थ इज साथ रहते हुए समर्पण करना आप सीखें. कोई भी बात है, कोई भी बोझ है, परमात्मा को समर्पित, अर्पित. मैं भी तेरा, मेरा परिवार भी तेरा, मेरी समस्याएं, मेरी जिम्मेवारियां भी तेरी. जहां मैं और मेरापन है वहीं विघ्न है. और जहां समर्पण में आता है बस सब कुछ तेरा तेरा तेरा, तो वहां कोई विघ्न नहीं है, जीवन निर्विघ्न हो जाता है। बाबा कहते हैं जहां मैं आया वहां तुम्हारी अच्छी स्थिति का गुलदस्ता मुरझाया, जहां मैं आया वहां माया आई, जहां मैं आया वहां मैलापन आया, और जहां तेरा आया वहां तुम तर गए, कल्याण हो गया। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा समर्पण। भगवान को समर्पणता सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए चढ़ जाओ प्रभु के ऊपर, चढ़ जाओ। कहते ना, एक चोर था, चोरी करने निकला, कुछ नहीं मिला, तो शिव जी के ऊपर जो सोने का घंटा लटक रहा था उसी को उतारने के लिए शिव जी के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं, सीढ़ी वीढ़ी थी नहीं, और जैसे शिव जी के ऊपर चढ़ा शिव जी प्रसन्न हो गए कि आज तक जितने भक्त आए किसी ने धतुरा चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, तू पहला ऐसा भक्त है जो मेरे ऊपर ही चढ़ गया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग तू क्या मांगता है। समर्पणता भगवान को अति प्रिय है, चढ़ जाओ, सब कुछ अर्पित कर दो, मेरा देह, मेरा परिवार, मेरे जो भी पुराने स्वभाव संस्कार, मैंपन, मेरापन अर्पित करके जाओ। एंड फिफ्थ इज, साक्षी होकर शुभ भावना से सकाश दो, साक्षी हो जाओ, शुभ भावना रखते हुए सबको सकाश दो, विश्व का कल्याण इसी में निहित है। तो ये हमें विघ्नों से मुक्त करेगा। अब हम अपने विघ्नों से ऊपर उठकर संसार के विघ्नों को देखें, विघ्नहर्ता बन जाएं, उलझे ना रहें, स्वयं में अपनी छोटी छोटी बातों में संसार को देखो। संसार पुकार रहा है, आह्वान कर रहा है, और बाबा भी हमसे ये आश रखते हैं कि बच्चे इन भक्तों की आवाज तो सुनो। बेचारे कितने दर्द में हैं, कितने दुख में हैं, कितने पीड़ा में हैं, तुम अपने उस विघ्न हर्ता स्वरूप में आ जाओ, उस सिद्धि विनायक के स्वरूप में आ जाओ, उस वरद विनायक के स्वरूप में आ जाओ, अपने उस चिंता मणि के स्वरूप में आ जाओ। स्वयं चिंतित मत रहो, स्वयं किसी कामना में मत रहो, स्वयं किसी आश में मत रहो, लेकिन इस स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो होंगे ना ऐसे, आज चूंकि गणेश चतुर्थी है तो इसमें हम यही सुंदर संकल्प लें कि बाबा अब हम आपकी गोद में बैठकर अपने स्वरूप में स्थित होकर सारे विश्व के कल्याणकर्ता बनेंगे। अपने सारे विघ्नों को हम यहां आपको अर्पित करके जा रहे हैं, विघ्नहर्ता बन के जा रहे हैं। जाएंगे ना ऐसे, ये बाबा से तोहफा लेके जाएंगे ना, यही वरदान लेकर जाएंगे, वहां जाकर के कोई विघ्न तो नहीं आएगा, कोई चिंता तो नहीं सताएगी, कोई बात नहीं ना, सब कुछ यहां अर्पित। तो इन पांचों बातों को भी अपने जीवन में लाएंगे और अपने आप को इस सुंदर स्वरूप में स्थित कर लेंगे। तो आप सभी विघ्नहर्ता बन जाएं, सारे विघ्नों से मुक्त, सारे विश्व का कल्याण करने वाले, और सभी आत्माओं का उद्धार कर उनके विघ्नों को नष्ट करने वाले, आने वाले समय में जो कि आ ही गया है, विनाश काल का समय, ऐसे काल में जबकि सारा संसार आपकी ओर देखेगा एक ऐसी प्यासी नजर से कि ये हमारे कल्याण करता, हमारे कल्याण करें, तो आप सबके कल्याण करने के योग्य रहें, उस स्वरूप में स्थित हो जाए। तो चलें इसी सुंदर स्वरूप में स्थित होकर चलें पुनः ट्रैफिक कंट्रोल के साथ साथ अपने सुंदर स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने विघ्नहर्ता स्वरूप देखें, परमात्मा शिव की सुंदर किरणें मुझ पर, जैसे उनकी किरणों की गोद में मैं बैठा हुआ हूं, और अपने विशाल स्वरूप के द्वारा सारी सृष्टि पर सुंदर शांति के, शक्ति के, पवित्रता के प्रकंपन फैला रहा, सभी को विघ्नों से मुक्त कर रहा हूं, सभी को वरदान दे रहा हूं, पूरे विश्व के ग्लोब को मोदक की तरह अपने हाथ में ले लें और उसे घुमाते हुए किसी की चिंता हरें, किसी के कष्ट हरें, किसी को वरदान दें तो किसी को सिद्धि सफलता का वरदान प्रदान करें। चले
प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए प्रभु का ध्यान कीजिए प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का I'm not afraid.